आरवी, क्या हुआ बेटा? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं और इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है?
बड़ी माँ, अंशु को बहुत तेज़ बुखार हो गया है। मैंने दवाई दी, ठंडे पानी की पट्टियाँ भी की, पर बुखार आराम नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ गया। मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया पर उनका फ़ोन नहीं लग रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है बड़ी माँ, हमें अंशु को अभी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, पर इस वक्त मैं अकेले नहीं जा सकूँगी, इसलिए मैंने आपको परेशान किया।
आरवी घबराई हुई सी एक सांस में ही सब बोल गई और सुयश जी और अर्पिता जी को उनके सभी सवालों के जवाब मिल गए। आरवी को यूं पैनिक करते देखकर सुयश जी ने बड़े ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए बेटा, कुछ नहीं होगा अंशु को, शांत हो जाइए, हम अभी लेकर चलते हैं उन्हें हॉस्पिटल। आरवी की जान में जान आई ये सुनकर, पर अब भी उसको अंशु की चिंता हो रही थी। सुयश जी ने अर्पिता जी को यहीं रुकने को कहा और जो होगा फ़ोन पर बताने को कहकर आरवी के साथ वहाँ से चले गए। पीछे बैठी आरवी अंशु को अपने सीने से लगाए मन ही मन भगवान से उसके लिए दुआ मांग रही थी। आधी रात थी तो ट्रैफिक नहीं था, कार तेज़ रफ्तार से सड़कों पर दौड़ते हुए हॉस्पिटल के बाहर जाकर रुकी। अंशु को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया, बुखार ज़्यादा था और बच्ची छोटी तो बुखार के सर पर चढ़ने का डर था, उस पर अमीर घर की बेटी तो डॉक्टर पर भी प्रेशर था। उन्होंने जल्दी से अपना काम शुरू किया, अंशु को इंजेक्शन दिए गए जिससे आधे घंटे में उसका बुखार कम होने लगा। आरवी सुयश जी के साथ परेशान सी बाहर बैठी थी। करीब एक घंटे बाद डॉक्टर उसके वार्ड से बाहर आए तो आरवी और सुयश जी जल्दी से उनके पास आ गए। सुयश जी कुछ पूछ पाते उससे पहले ही आरवी ने बेचैन निगाहों से उन्हें देखते हुए अधीरता से सवाल किया, डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? चिंता की कोई बात तो नहीं? वो ठीक है ना? आरवी ने एक ही सांस में इतने सवाल किए और घबराई हुई सी उन्हें देखने लगी, जबकि डॉक्टर ने खामोशी से उसके सवाल सुने और शांत स्वर में बोली, पेशेंट को बुखार बहुत हाई था और बुखार के दिमाग पर चढ़ने का डर था जिससे सिचुएशन बिगड़ जाती, और क्योंकि बच्ची है तो जान जाने का भी खतरा रहता, पर उन्हें सही वक्त पर यहाँ लाया गया जिस वजह से अब हालात काबू में है। पेशेंट का फीवर उतर गया है और दवाइयों के असर में अब वो गहरी नींद में सो रही हैं। वैसे तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, फिर भी हम आज की रात उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और हालात ठीक रहे तो सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। अब जाकर दोनों के प्राण लौटे, वरना दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। फ़र्क बस इतना था कि आरवी जाहिर कर रही थी, पर सुयश जी ने खुद को संभाला हुआ था ताकि आरवी को धीरज धरा सके, वरना वो और ज़्यादा घबरा जाती। पर अंशु अब ठीक है, उसका बुखार उतर गया, ये सुनकर दोनों को ही सुकून मिला। आरवी ने आँखें बंद करके मन ही मन लाखों बार भगवान को धन्यवाद कहा, फिर आँखें खोलकर डॉक्टर को देखकर बोली, डॉक्टर क्या मैं अपनी बेटी को देख सकती हूँ? जी डॉक्टर, हम भी पूछना चाह रहे थे कि क्या हम अपनी पोती से मिल सकते हैं? सुयश जी ने भी वही सवाल किए। दोनों की चिंता भरी नज़रों को देखकर डॉक्टर ने हामी भरते हुए कहा, जाकर देख लीजिए, और कोई एक अंदर उनके साथ रुक भी सकता है, बस ध्यान रखिएगा कि पेशेंट नींद में है तो डिस्टर्ब मत कीजिएगा उन्हें। दोनों ने हामी भरी और डॉक्टर वहां से चले गए। सुयश जी और आरवी दोनों अंदर आए तो अंशु बेड पर सुकून से सो रही थी। सुयश जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, फिर उसके माथे को चूमकर आरवी को अंदर रुकने को कहकर खुद बाहर चले गए। आरवी भीगी पलकें उठाए एकटक अंशु को देखती रही, फिर आगे बढ़ते उसके चेहरे को चूमते हुए उसको अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद उसने उसको खुद से अलग किया और पास रखे स्टूल पर बैठकर प्यार से उसके सर पर थपकी देने लगी। सारी रात उसकी आंखों ही आंखों में कटी। गनीमत थी कि रात में उसको दोबारा बुखार नहीं आया। सुबह डॉक्टर ने आकर उसको चेक किया, फिर कुछ दवाइयां लिखकर आरवी को सब समझा दिया। सुयश जी ने बिल पे किया और डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अंशु और आरवी के साथ घर के लिए निकल गए। जाने से पहले अर्पिता जी को इन्फॉर्म कर दिया। जब उन्होंने सुना कि अंशु ठीक है और अब घर वापस आ रही है तो मंदिर के लिए निकल गई और उनके पीछे से शान ने वहां कदम रखा। शान सुबह के 7 बजे घर आया। आरवी के हॉस्पिटल जाने की बात अर्पिता जी के अलावा कोई नहीं जानता था। शान आते ही कमरे में गया, पर उसे आरवी ना तो नीचे दिखी तो और नहीं यहाँ। अंशु भी यहाँ नहीं थी। उसने जाकर अंशु का रूम चेक किया, फिर पूरे घर में ढूंढा, सबसे पूछ पर उसको ना आरवी की कोई खबर मिली और ना ही अंशु की। वो बुरी तरह परेशान हो गया और कुछ डर भी गया। आरवी का फोन भी उसको रूम में ही मिला, जिससे वो और ज्यादा परेशान हो गया। अर्पिता जी भी जल्दबाजी में फोन घर छोड़ गई थी तो उनसे भी वो कुछ पूछ नहीं सका, और सुयश जी का ख्याल उसके मन में आया ही नहीं। शान के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। बीती रात आरवी ने बहुत बार उसको फोन किया था और जल्दी आने को भी कहा था, पर वो नाइट शूट में फंसा होने की वजह से न तो जल्दी ही आ सका और न ही फोन का जवाब ही दे सका, और अब जब आया तो आरवी और अंशु दोनों की कहीं कोई खबर नहीं था। ऐसे में उसका घबराना गलत तो नहीं था। वो हाथ में फोन भेजे परेशान सा हॉल में चहलकदमी करने लगा। सुभाष जी भी परेशान से वहीं बैठे थे और छाया शान की अच्छी खासी डांट सुनकर एक तरफ सर झुकाए खड़ी थी।
कुछ देर बाद बाहर कार रुकने की आवाज आई तो शान तेज कदमों से गेट की तरफ बढ़ गया। अभी वो गेट से कुछ कदमों की दूरी पर ही था कि अपने सीने से अंशु को लगाए आरवी ने घर में कदम रखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा एकदम उदास था। सादा सा सलवार सूट पहना हुआ था उसने, जो रात को पहनती थी। बाल भी बिखरे हुए थे, अंशु उसके सीने से लिपटी हुई थी। ये सीन देखकर शान के कदम ठिठक गए और आंखों में अनगिनत सवाल उमड़ आए, पर वो आरवी से उन सवालों के जवाब तक नहीं ले सका क्योंकि आरवी ने उसे कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया। शान पर नजर पड़ते ही आरवी के चेहरे पर गुस्से और नाराजगी के भाव उभर आए और अगले ही पल वो उसकी मौजूदगी को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। शान उसकी नाराजगी और गुस्से की वजह तक ना समझ सका, पर आरवी का यूं उसे नजरअंदाज करके जाना उसको नागवार गुजरा। उसकी भौहें इकट्ठी हो गईं। आरवी कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि उसके कानों में शान की गुस्से भरी आवाज पड़ी। सुबह सुबह इस हालत में कहां से आ रही हो? मुझसे बिना पूछे कहां लेकर गई थी मेरी बेटी को? मैं कब से उसको ढूंढ रहा हूं और तुमने उसको लेकर जाने से पहले मुझे या किसी को कुछ बताना तक जरूरी नहीं समझा? अंशु आरवी के सीने से लगी सो रही थी। शान की आवाज सुनकर वो घबरा गई और खुद को पूरी तरह से आरवी के सीने में छुपा लिया। वहीं आरवी के कानों में शान के कहे शब्द पड़े तो उसके आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। शान की पूरी बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो गुस्से से उसकी तरफ पलटी और उसको अपनी लाल धधकती आंखों से घूरते हुए बोली, हाँ नहीं समझा मैंने आपको कुछ बताना जरूरी क्योंकि आप ये डिजर्व नहीं करते। नहीं समझती मैं आपको कुछ भी बताना जरूरी क्योंकि इसके काबिल नहीं है आप। क्यों आए हैं आप घर? जहां रात भर थे वहीं रहते ना आराम से। बुलाया तो नहीं था आपको किसी ने वापस जो यहाँ आकर एहसान जता रहे हैं? आरवी के बात करने का लहजा देखकर सब आंखें फाड़े उसको देखने लगे। ये अप्रत्याशित था उनके लिए। वहीं शान का गुस्सा भी अब भड़क उठा और उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात करो, मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है। मेरी बेटी को आराम की जरूरत है, तो बेहतर होगा कि आप अपना गुस्सा कहीं और जाकर उतारे।
मेरी बेटी? शान ने आंखें तरेर कर आरवी को देखा तो उसने भी बिना घबराए उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए उसी लहजे में जवाब दिया, हाँ मेरी बेटी, क्योंकि अगर आपकी बेटी होती तो कल रात जब उसे आपकी जरूरत थी तो आप उसके साथ होते। क्या कह रहे थे आप कि मैं आपकी बेटी को आपको बिना कुछ बताए कैसे लेकर चली गई? तो मिस्टर शांतनु मल्होत्रा, बहुत जल्दी आपको अपनी बेटी की याद नहीं आ गई? कल शाम कहाँ थे आप जब आपकी बेटी आपको घर बुला रही थी? उस वक्त कहाँ थे आप जब वो सो नहीं रही थी कि अपने डैडी के साथ सोएगी? कहाँ थे उस वक्त आप जब आधी रात गए मैंने आपको इतने कॉल्स किए ये बताने के लिए कि अंशु को बहुत तेज बुखार है, पर आपने एक बार फोन उठाना जरूरी नहीं समझा? बुखार से तप रही थी मेरी बेटी, पर आपको अपना गुस्सा और अपनी नफरत प्यारी थी। आधी रात गए मैं बड़ी माँ और बड़े पापा को उठाने गई क्योंकि आप नहीं थे यहाँ। अगर कल आपके वजह से अंशु को कुछ हो जाता तो मैं नफरत करती आपसे। अब मुंह मत खुलवाइए मेरा और दूर रहिए मुझसे और मेरी बेटी से। आरवी बेहद गुस्से में थी आज और उसका गुस्सा भी जायज था। उसने सबको उनके सवालों का जवाब दे दिया था और फिर शान को गुस्से से घूरते हुए पलटकर वहां से चली गई। सब स्तब्ध से खड़े उसको देखते ही रह गए। शान शॉक्ड सा खड़ा जाती हुई आरवी को देख रहा था और उसका कहा एक एक शब्द शान के कानों में पिघलते शीशे की तरह उतरते हुए उसकी नसों में खून के साथ दौड़ने लगा था। अनजाने में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसका एहसास उसको अब हो रहा था। जहां नीचे सब बुतके खड़े थे वहीं आरवी रूम में पहुंच चुकी थी। उसने अंशु को बेड पर लिटाया और जैसे ही पीछे हटने लगी अंशु ने उसके दुपट्टे को पकड़ लिया और अपनी बंद आंखों को हल्का सा खोलने हुए धीमी आवाज में बोली, मम्मा नहीं जाओ बेबी को छोड़कर। उसकी आवाज़ भी ठीक से बाहर नहीं आ रही थी। फूल सी बच्ची का चेहरा एकदम मुरझाकर पीला पड़ गया था, मुंह सूखकर छोटा सा हो गया था। आरवी की आंखों में नमी तैर गई उसकी हालत देखकर। एक ही रात में कितनी कमजोर हो गई थी वो। उसने खुद को संभाला और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी बेटा, बस आपके लिए खाना मंगवा दें फिर मम्मा सारे वक्त आपके साथ ही रहेगी। अंशु को समझाकर आरवी रूम से बाहर आ गई और वॉली बैल्कनी से नीचे झांकते हुए छाया को देखकर बोली, छाया अंशु के लिए जल्दी से खिचड़ी बना दो, कुछ खाएगी तो दवाई ले पाएगी। छाया जो आरवी का चंडी रूप देखकर सदमे में चली गई थी वो उसकी आवाज़ सुनकर होश में लौटी और झट से सहमति में सर हिला दिया। टू बी कंटिन्यूड।